الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لنسائي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. یہ اسلامی کیلنڈر میں تیسرا مہینہ ہوتا ہے. پہلا مہینہ محرم، دوسرا مہینہ صفر، تیسرا مہینہ ربیع الاول. پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دنیا سے آخرت کی طرف تشریف لے گئے، جس کو ہم ہماری بول چال میں کہتے ہیں انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، وفات ہو گئی. محرم سے پہلے ذی الحج کا مہینہ ہوتا ہے، جو اسلامی کیلنڈر میں بارہواں مہینہ ہوتا ہے، اور اس مہینے کے اندر حج ہوتا ہے. تو تقریباً تین مہینے پہلے ذی الحج کے مہینے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور یہ مدینہ منورہ جانے کے بعد پہلا اور آخری حج تھا. حج میں بہت بڑا صحابہ کا مجمع تھا. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 100,000 سے زیادہ صحابہ کا مجمع تھا، اور سارے صحابہ خوش خوش تھے کہ پیارے آقا کا یہ زندگی کا آخری حج لگ رہا ہے، یا یہ کہ فرض ہونے کے بعد پہلا حج ہے. تو لوگ دور دور سے مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے پہنچے، اور اس حج میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ایسی فرمائی کہ جس سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ زندگی کا آخری حج ہو رہا ہے. حج کر کے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے, ذی الحج کا مہینہ پورا ہوا, محرم کا مہینہ آیا, سفر کا مہینہ آیا اور حضور بیمار ہو گئے. بیماری شروع ہوئی سر میں درد سے, آپ کو درد رہنے لگا دماغ میں سر میں, یہاں سے بیماری شروع ہوئی. پوری طاقت اور ہمت سے نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے, پھر بیماری جب زیادہ ہو گئی تو مسجد میں نماز روک دی اور حضور گھر میں نماز پڑھنے لگے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روم تھا وہ مسجد کے بالکل ساتھ لگا ہوا تھا, لیکن کمزوری ویکنیس اتنی زیادہ ہو گئی کہ روم میں سے مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھانا بھی مشکل ہو گیا. فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھاوے, یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے, کمزور ہے اور 17 یا 18 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو پڑھائی, امامت کرائی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی فکر کرتے رہے. آپ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں فرمایا تھا کہ میں دنیا سے اب جا رہا ہوں, اللہ کے یہاں سے مجھے بلانے کے لیے فرشتہ آئے گا, میں اس بلانے والے کی بات کو قبول کر لوں گا. اسی لیے کہ اللہ تعالی نبی کو ایسے موت نہیں دیتے, نبی کی چوائس پر چھوڑتے ہیں, چاہت پر چھوڑتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں رہنا ہے یا میرے پاس آنا ہے, نبی کی مرضی پہ چھوڑا جاتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ نبی کو جب چوائس دی جائے, اختیار دیا جائے کہ دنیا میں رہو گے کہ اللہ کے پاس جاؤ گے, تو نبی تو یہی کہیں گے اللہ مجھے آپ کے پاس آنا ہے. اس لیے کہ ایمان والوں کو سب سے زیادہ پیار اللہ سے ہوتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, سب سے زیادہ محبت اور پیار اللہ سے. تو وہ تو نبی ہے, پیغمبر ہے, رسول ہے اور تمام نبیوں کے سردار ہے, تو ان کو تو اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے. تو کہا اللہ کے یہاں سے بلانے والا آئے گا, میں اس کی دعوت قبول کر کے میرے اللہ کے یہاں چلا جاؤں گا. اندازہ ہو گیا تھا صحابہ کو कि अब आका दुनिया से चले जाएंगे। सोमवार का दिन था, पीर का दिन, फजर की नमाज ऐसी हुई कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला उन्होंने लोगों को नमाज पढ़ाई। तो उस जमाने में मकान के दरवाजे पे पर्दे लटके रहते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूम मुबारक मस्जिद की बिल्कुल दीवार के साथ, पर्दा उठावे तो पूरी मस्जिद नजर आवे। दो मकान ऐसे थे कि जिसके दरवाजे मस्जिद में थे, बाकी सब के दरवाजे हुजूर ने मस्जिद में बंद करवा दिए। आगे से आओ, दरवाजे से आओ। एक अपने मकान का दरवाजा और दूसरा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के मकान का दरवाजा आका ने मस्जिद में बाकी रखा। अल्लाह आपको भी ले जावे, मुझे भी बार बार मदीने पाक ले जावे। तो अब जाओ तो मस्जिद में जरा ध्यान करना, किबले की तरफ मुंह करके खड़े रहते हैं तो जिधर सीधा हाथ आता है हय्यालस्सला, उधर जो पहला दरवाजा है वहां लिखा हुआ है कि यहां हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के मकान का दरवाजा था। और उस जमाने के मकान छोटे छोटे झोपड़ी जैसे होते थे और हय्याल फलाह की तरफ दूसरी तरफ प्यारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के रूम मुबारक बिल्कुल आमने सामने। हय्याल सला की तरफ अबू बकर सिद्दीक, हय्याल फला की तरफ आका का मकान। और नौ पाक बीवियां थी, उनके छोटे छोटे रूम बने हुए थे लाइन में। और जन्नत की औरतों की सरदार, आका के दिल का टुकड़ा हसन हुसैन की अम्मा फातिमतु जहरा रदी अल्लाहु ताला अन्हा, उनका रूम भी पीछे था जहां सुफा का चबूतरा है, सुफा का ओटला कहलाता है। अभी भी मस्जिद में वो चबूतरा मौजूद है, ओटला मौजूद है मस्जिद नबवी में। वहीं फातिमतु जहरा और हजरत अली का मकान था। फजर की नमाज ऐसे हुई कि सिद्दीक अकबर अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे और हुजूर ने मकान का पर्दा खुलवाया, पर्दा खोलो। मस्जिद में अपने नूरानी चेहरे का दीदार करवाया, एकदम सफेद चमकता हुआ चेहरा, ऐसा नूर कि लगता ऐसा था कि सहाबा नमाज तोड़ दे रहे आका के दीदार के लिए। ऐसा प्यारा नूरानी चेहरा, आखिरी दिन का दीदार। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु हयात थे। हुजूर की जिंदगी के आखिरी दिन तक आपके चचा भी हयात थे, दूसरे चचाओं का इंतकाल हो गया था, चचा अब्बास जिंदा थे। और हुजूर को अपने चचा से बहुत मोहब्बत थी कि मैं मेरे चचा से हूं और मेरे चचा मेरे हैं। हुजूर फरमाते थे मैं और मेरे चाचा हम दोनों एक है, हुजूर फरमा रहे हैं। तो चाचा अब्बास नमाज पढ़ के गए घर पर, देखा हुजूर के चेहरे को, खानदान के बड़े आदमी थे, कुटुंब के वडील आदमी थे। तो हुजूर का चेहरा देखा तो चाचा अब्बास फरमाने लगे कि मैं हमारे बनू हाशिम खानदान के लोगों के चेहरों को पहचानता हूं, बस मुझे लगता है कि मेरे आका की जिंदगी का अब आखिरी दिन है। मुझे मालूम है हमारे खानदान में जब मौत का वक्त आता है तो उससे मैं कहता हूं कि बस अब ज्यादा जिंदगी नहीं है। तबीयत थोड़ी ठीक लग रही थी फजर के वक्त। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ा के आए, उनके लिए तो कोई पर्दा नहीं था क्योंकि उनकी बेटी हजरत आयशा हुजूर की पाक बीवी, उनके रूम में हुजूर आखिरी दिनों में थे, बाप बेटी हुजूर घर में तशरीफ लाए। खबर पूछी, खैरियत है? अगले दिन के मुकाबले में तबीयत अच्छी लग रही थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक की एक बीवी मदीना से कुछ बाहर रहती थी तो इजाजत ली आका से, आका वो दूसरी बीवी के घर में जाके आ जाता, ठीक है जाओ, इजाजत ली। बस ये 9:30-10 बजे का तकरीबन वक्त होगा और आखिरी हालत शुरू हुई। जब आखिरी हालत शुरू हुई तो हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक, ये पूरा मुंह मुबारक हजरत आयशा की गोद में था। हजरत आयशा बैठ गए, माँ आयशा की गोद में हुजूर का सर मुबारक था। यहां पर हजरत आयशा की सीने के पास सर मुबारक और आका की आखिरी हालत शुरू हुई। इतने में हजरत आयशा के भाई आए रूम में, जिनका नाम अब्दुल रहमान था। उनके हाथ में नई नई ताजी ताजी मिसवाक थी, हुजूर को मिसवाक बहुत पसंद थी। पूछा, मिसवाक देवे आपको? कल मिसवाक लाओ। कमजोरी बहुत थी, चबा नहीं सकते थे तो माँ आयशा ने मिसवाक चबाई, नरम की। कैसी मोहब्बत होगी मियां बीवी के बीच में कि आखिरी वक्त चल रहा है जिंदगी का, लेकिन मोहब्बत का हाल यह है कि आका का सर और चेहरा हजरत आयशा की गोद में है। ये प्यारे नबी हमको सिखा रहे हैं बीवी से कैसी मोहब्बत करनी चाहिए। आखिरी वक्त में भी उनकी गोद में सर है और मिसवाक माँ आयशा ने चबाई, नरम की, हुजूर को दी, हुजूर ने मिसवाक की। हजरत आयशा कहती है, माँ आयशा हमको कहती है कि मेरी खुश नसीबी है कि आखिरी चीज जो हुई वो कि मेरा थूक और हुजूर का थूक एक साथ जमा हो गया। ये आखिरी चीज हुई कि मैंने चबाया तो चबाएंगे तो थूक तो लगेगा मिसवाक पर, फिर वही थूक वाला मिसवाक आका ने लिया, हुजूर ने लिया, अपने मुंह में रखा और फिर हुजूर ने वो मिसवाक किया और हजरत आयशा की गोद में सर है। हजरत आयशा की थूक वाली मिसवाक आका ने अपने मुंह में लगाई और उसके बाद अल्लाह की तरफ से आखिरी सवाल हुजूर को हुआ, कहां रहना है, दुनिया में या मेरे पास आना है? तो हुजूर जवाब दे रहे, अल्लाहुम्मा फिर रफीकिल आला हल्ला आपके पास आना है। बस ये जो हुजूर की जुबान से निकला, फिर रफीके लाला माँ आयशा समझ गए कि हुजूर जा रहे हैं, तशरीफ ले जा रहे हैं, खुदा के दरबार में पहुंच रहे हैं। और थोड़ी देर के अंदर सांस बंद हो गई और अल्लाह के दरबार में हुजूर पहुंच गए। ये समझने की चीज है, जिंदगी की आखिरी घड़ी तक प्यारे आका ने अपनी बीवी के साथ कैसा मोहब्बत भरा सुलूक करके जिंदगी गुजारी। ये है हमको हमारे आका की तरफ से लेसन, सबक, नसीहत। और जबान से आका ने इरशाद फरमाया, अला खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही वअना खैरुकुम लिनिसाई। तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपनी बीवी, बच्चों और घर वालों के लिए अच्छा हो। बाहर तो लोग बहुत हंस हंस के दोस्तों से बातें करते हैं, अपनी बीवी से हंस के, मोहब्बत से, प्यार से, शफकत से बात करें, ये सही माने में सच्चा इंसान है, बेहतरीन इंसान है। आका ने फरमाया सबसे अच्छा इंसान। इसीलिए अच्छे इंसान हमको बनना है। और क्वालिटी इंसान, अच्छा इंसान जो घर वालों के साथ अच्छा रहे, फैमिली वालों के साथ अच्छा रहे, उनके साथ हंसी खुशी रहे, उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहे, ये है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ आखिरी सबक, आखिरी नसीहत, आखिरी लेसन। और आखिरी चीज जो मिसवाक की नहीं, इसीलिए जो आदमी मिसवाक करेगा हुजूर की आखिरी सुन्नत को, तो अल्लाह ताला उसको मौत के वक्त पर कलमा अता फरमाएंगे, कलमा नसीब होगा उसको। घर वालों से अच्छा सुलूक रखो, अच्छी मोहब्बत रखो और मिसवाक की सुन्नत को जिंदा करो। मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े सबके लिए मिसवाक करना ये प्यारे आका की प्यारी सुन्नत है। अल्लाह हम सबको इसको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।